विशेषतां क्रियों के सविधम विधिपूर्वक जगृहे विकार किया पाणीन हाथों को अनुरूप के अनुरूप स्वमायया अपनी अंतरंगा शक्ति से श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य दिए। अनुवाद, वे सभी राजकुमारियां अलग अलग कमरों में रखी गई थीं और भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पाणी ग्रहण कर लिया। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में पांचवें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान का उनके असंख्य स्वांशों के साथ निम्नवत वर्णन हुआ है। अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेश दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान हैं। वे अपने असंख्य स्वांशों से अभिन्न हैं। वे अच्युत आदि तथा असीम हैं एवं नित्य स्वरूपों वाले हैं। यद्यपि वे सबसे प्राचीन पुरुष हैं, किंतु वे सदैव नवीन तथा युवा रहते हैं। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से स्वयं प्रकाश के विविध पुरुषों में और पुनः प्राभव तथा वैभव रूपों में विस्तार कर सकते हैं। ये सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान ने विभिन्न कमरों में रहकर रह रही राजकुमारियों के साथ विवाह करने के लिए जिन रूपों में अपना विस्तार किया, वे उनमें से हरेक के अनुरूप होने से कुछ कुछ भिन्न थे। वे भगवान के वैभव विलास रूप कहलाते हैं और उनकी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा सक्रिय होते हैं। अनुवाद को दोहराइएगा। वे सभी राजकुमारियां अलग अलग कमरों में रखी गई थीं और भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पाणी ग्रहण कर लिया। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्नीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं प्रमुखजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायके कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में और इसके पहले जो दो श्लोक हैं इनमें उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की वो लीला जिसमें उन्होंने भौमासुर या नरकासुर का वध करके 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। वैसे जब उन्होंने देखा कि भौमासुर काफी उपद्रव मचा रहा है सारे ब्रह्मांड में, तो भगवान ने ये ठीक समझा कि भौमासुर का वध करना अच्छा रहेगा। तो उन्होंने वध तो कर दिया, परंतु भौमासुर की जो माता है पृथ्वी देवी, उन्होंने कृपा याचना की और कहा कि अब भौमासुर का एक पुत्र है, उसे आप राजगद्दी पर बिठा दीजिए। तो कृष्ण भगवान ने ऐसे ही किया और फिर अंदर चले गए, जहां पर भौमासुर ने अनेक राजकन्याओं को गिरफ्तार करके रखा था। वैसे वैष्णव आचार्य ने बताया कि ये राजकन्याएं केवल पृथ्वी की नहीं थीं, स्वर्गलोक की देवियां और यहां पृथ्वीलोक के राजाओं की जो पुत्रियां थी, राजकुमारियां थी, सिद्धों की पुत्रियां, ये सब यहां पर भौमासुर ने इकट्ठे करके रखे थे, इनको गिरफ्तार करके रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन सब से विवाह कर लिया, उनको पहले मुक्त कर दिया। और ऐसे प्रथा है कि एक बार किसी ने किसी राजकुमारी को छू लिया तो फिर दूसरा कोई क्षत्रिय विवाह नहीं करता उससे। अब भौमासुर ने तो छू लिया था तो कौन विवाह कर लेता उनसे, उनके सारे जीवन का सवाल था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई समस्या नहीं, मैं ही विवाह कर लेता हूं। लेकिन इसके पहले उनको एक छोटा सा कार्य और करना था, उनको स्वर्गलोक में जाके अदिति देवी की जो कुंडल है और वरुण देव का जो छाता है वो लौटाना था, जो कि भौमासुर ने चोरी कर ली थी। तो उन्होंने इन 16,100 राजकुमारियों को द्वारका भेजा बड़े ठाट से, साथ साथ में न केवल रथ थे, बहुत सारे बड़े बड़े हाथियां भी थे उनके साथ में, सैनिकों के साथ में वापस भेज दिया और कहा कि मैं शीघ्र ही आऊंगा, मैं स्वर्गलोक जाके आ रहा हूं। जैसे हम लोग कहते मैं अभी लोई बाजार जाके आया, बस कहते मैं अभी आया, थोड़ा स्वर्गलोक होकर आया। तो भगवान गए स्वर्गलोक में, वहां जाकर देवों के जो की जो माता हैं अदिति देवी, उनकी कुंडल लौटा दिए। इंद्रदेव बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि इंद्रदेव के अनुरोध पर ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर या भौमासुर का वध किया था। तो इंद्रदेव इतने कृतज्ञ हो गए, अपना सिर झुका लिया उन्होंने और भगवान के सामने अपने आभार व्यक्त किया। लेकिन सत्यभामा देवी का और एक कार्यक्रम था, उनको स्वर्गलोक के पारिजात वृक्ष चाहिए था, और क्योंकि रुक्मिणी देवी को फूल मिला था, अब सत्यभामा देवी सोच रहे थे कि मुझे भी मिलना चाहिए, तो फूल क्यों, मुझे वृक्ष ही चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तो चलते हैं स्वर्गलोक में, तो भले वो कृष्ण हो या कोई संसार के कोई व्यक्ति हो, कौन शक्तिशाली है हम समझ सकते हैं, पति या पत्नी। तो भगवान कृष्ण को बात माननी पड़ी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष उठाया, लेकिन इंद्रदेव को बहुत क्रोध आया और तुरंत उन्होंने रोकना चाहा और पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करना चाहा और किया भी भगवान कृष्ण से। जब परीक्षित महाराज इस कथा को सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे, अभी अभी तो इन्होंने कृपा याचना की थी, अभी अभी निवेदन किया था भगवान से कि ये भौमासुर नरकासुर जो है ये इसने बहुत उत्पात कर दिया है, इसका वध कर दीजिए। और जब भगवान कृष्ण आए थे स्वर्गलोक, तो स्वयं अपना सर भगवान के चरण कमलों में रखा था, और जैसे ही एक पारिजात वृक्ष ले जाने की बात आई तो भगवान से ताकत लगाकर युद्ध कर लिया। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज का चेहरा देख लिया कि कैसे आश्चर्यचकित हो गए परीक्षित महाराज। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि देखो, धिक्कार हो ऐसे देवताओं के ऐश्वर्य को। और फिर वैष्णव आचार्य ने टीका लिखी है कि देखो, वैसे देवगण वो होते हैं जो सत्वगुण में स्थित होते हैं, मनुष्य रजगुण में, और असुर आदि राक्षस आदि वो तमोगुण में। परंतु यहां देखते हैं कि ये इंद्र हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, देवताओं के भी राजा हैं, और वो सतगुण में नहीं, ऐसे तामसिक व्यवहार उन्होंने किया। तो इससे हम सीख सकते हैं कि जो ऐश्वर्य है या धन है, ये आदमी के चित्त को कितना बिगाड़ सकता है, कितना पथ भ्रष्ट कर सकता है, कितनी विस्मृति दिला सकती है ये। तो खैर, भगवान श्री कृष्ण ने आसानी से इंद्रदेव को हराया और यहां पर लौट के आए। जब वापस द्वारका लौट के आए तो सत्यभामा देवी के महल में इस पारिजात वृक्ष को रखा और ये सुगंध सब जगह फैलता रहा। और फिर उन्होंने इन 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। तो किस प्रकार से विवाह किया यहां वर्णन है कि हर एक राजकुमारी के साथ वो उपस्थित थे। मुहूर्त एक क्षण का दिया हुआ था, एक समय का दिया हुआ था, और विवाह 16,108 के साथ करनी थी। यदि एक विवाह एक कुमार राजकुमारी से विवाह करते, उसके बाद दूसरे राजकुमारी के साथ जाकर उनसे विवाह करते, ऐसे करके 16,108 क्रम से यदि जाते तो मुहूर्त का समय तो रहने ही जाता। तो क्या उपाय था उसके लिए? एक ही उपाय था जो केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान ने अपने आप को विस्तार कर लिया और जितने राजकुमारियां थीं 16,108 उनके साथ में एक साथ विवाह कर लिया। तो यहां प्रभुपाद जी भी समझा रहे हैं कि भगवान ने अपने आप को इस तरह से विस्तार किया कि जैसे उस राजकुमारी का स्वभाव था, उसकी चाह थी, ठीक उस प्रकार से भगवान ने अपने आप को विस्तार कर लिया। वैसे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझाते हैं कि भगवान के तरह तरह के विस्तार होते हैं, भगवान के रूप अनेक प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं स्वयं रूप, जो रूप केवल स्वयं अपने आप के ऊपर निर्भर है, स्वयं रूप, और किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी दूसरे रूप के ऊपर निर्भर नहीं है, वो है स्वयं रूप। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इस श्लोक का उदाहरण देकर रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में कहते हैं कि यह है स्वयं रूप, जो रूप किसी स्वयं के ऊपर ही आधारित है और किसी दूसरे के ऊपर आधारित नहीं है। ये है गोविंद, श्याम सुंदर, गोलोक वृंदावन में रमण करने वाले। साथ साथ दूसरे रूप हैं तदेकात्म रूप। तदेकात्म रूप मतलब वो भगवान से अभिन्न होते हुए भी उनका थोड़ा रूप और आकार में अंतर है। अलग अलग कारणों से भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, और इनके भी विभाजन हैं, जैसे स्वांश हैं और विलास हैं, और इसके बाद फिर तीसरी जो श्रेणी जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं वो है आवेश, शक्ति आवेश, जैसे कि नारद जी हैं, चार कुमार हैं, पृथु महाराज हैं, व्यास देव जी हैं, ये सब शक्ति आवेश अवतार माने जाते हैं। और शुरुआत में ही चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में ही पहले अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान के जो अवतार भी होते हैं और उनके प्रकाश भी होते हैं। अवतार हैं जैसे अंश अवतार, गुण अवतार और शक्तावेश अवतार, परंतु प्रकाश इनसे अलग हैं। प्रकाश हैं प्रकाश विग्रह है और विलास विग्रह है। प्रकाश विग्रह ये स्वयं रूप से अभिन्न होते हैं, ये स्वयं रूप के बिल्कुल उनके रूप मिलते, इनका उनका रूप मिलता जुलता है, अलग नहीं है। विलास विग्रह थोड़े रूप आदि का अंतर है, जैसे बलराम जी हैं, नारायण हैं, ये सब विलास विग्रह कहलाते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं रूप से बिल्कुल मिलता जुलता एक रूप जब विस्तार करते हैं तो वो स्वयं रूप ही है, उसको प्रकाश विग्रह कहते हैं। और फिर कविराज गोस्वामी उदाहरण देते हैं वृंदावन में जो भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला के समय अपने आप को विस्तार किया और प्रत्येक गोपी के साथ उन्होंने लीला की, तो ये भगवान का प्रकाश विग्रह का उदाहरण है। साथ साथ द्वारका का उदाहरण भी देते हैं कविराज गोस्वामी और कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया तो अपने प्रकाश विग्रह को प्रकट किया। वैसे प्रकाश विग्रह का विशेषता यह है कि रूप आकार हर चीज में बिल्कुल अभिन्न है, परंतु यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो रूप भगवान ने स्वीकार किया था ये थोड़ा थोड़ा अंतर हरेक रूप में था, क्योंकि वो देख रहे थे कि हरेक रानी का स्वभाव क्या है, उसकी चाल, उसकी इच्छा क्या है, उस हिसाब से भगवान ने अपने आप को विस्तार किया, इसलिए वो कहते हैं कि वो वैभव विलास कहलाते हैं। करिए तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, परंतु देखिए ये भागवत का जो सिद्धांत है, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश जो है कितने सूक्ष्म है, कितने आगे बढ़े हुए हैं। जो भगवत तत्व क्या है इतनी गहरी बात है, बहुत ही गहरा विषय है। वैसे हम देखते हैं कि आमतौर से लोग केवल सोचते हैं कि भगवान है, हाँ है, लेकिन भगवत तत्व, भगवान का रूप, भगवान के अनेक रूप, उनके विस्तार, तरह तरह के विस्तार और उसका विश्लेषण, ये केवल भागवत जैसे ग्रंथों में हम पा सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने जो विश्लेषण कर दिया, जो टीका की है, जो सिखलाया सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को, जिस आधार पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने भागवतामृत जैसे ग्रंथों की रचना की, उससे हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो हमें जानना चाहिए कि वैसे कोई अंतर नहीं है चैतन्य चरितामृत में आदि लीला के पहले ही अध्याय में कविराज गोस्वामी कहते हैं, एक विग्रह यदि है बहुरूप आकार तो भेद नहीं एक स्वरूप। एक विग्रह यदि है बहुरूप, विग्रह यदि एक ही हो लेकिन बहुरूप हो, आकार तो भेद नहीं एक स्वरूप, आकार में भी कोई भेद नहीं है, स्वरूप एक ही है। महिषी विवाहे जाए छे कोलोरास यहाँ के को ही कृष्ण मुख्य प्रकाश। महिषी विवाहे मतलब द्वारका के पठानियों के साथ जब उन्होंने विवाह हुआ, और साथ साथ जाए छे कोलोरास, रास लीला में जो उन्होंने अपने आप को विस्तार किया, ये दोनों मुख्य प्रकाश, उनके प्रकाश विग्रह हैं, ऐसा कविराज गोस्वामी यहाँ पर। हाँ, उन्हें गोविंद की हम पूजा कर रहे हैं, ये स्वयं प्रकाश स्वयं रूप है, जिनका वर्णन अभी हुआ वो स्वयं रूप है, भगवान स्वयं रूप भगवान। यहाँ जो चर्चा हो रही है वो प्रकाश विग्रह की हो रही है, ये जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैभव विलास की। चित्रम बतरित देखेन वपुषा युगपत पृथक गृहेशु द्व्यश्च साहस्रम स्त्रिय एक उदाहवहत। ये बड़े आश्चर्य की बात है, चित्रम अहो चित्रम, चित्र मतलब बहुत आश्चर्य। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कृष्ण की जो एकेन, वैसे हैं एक ही श्री कृष्ण, अद्वितीय हैं, फिर भी उन्होंने युगपत एक ही समय एक ही क्षण में पृथक गृहेशु अलग अलग घरों में अलग अलग कमरों में उन्होंने द्विअष्ट साहस्रम 16,000 स्त्रिय रानियों से विवाह किया उदावहत। ये कितने आश्चर्य की बात है। ये वैसे श्रीमद् भागवत की ही कई श्लोक है। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्वयोः। रासोत्सव संप्रवृत्तः, तो जब रास उत्सव भगवान ने अपनी रास लीला का उत्सव जो है वो प्रारंभ किया गोपी मंडल मंडितः, और वो मंडित थे सुशोभित थे गोपियों के मंडलों से, घिरे हुए थे गोपियों के द्वारा। योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्वयोः, तो तासाम मध्ये द्वयोर्वयोः मतलब दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, ऐसे ऐसे उन्होंने मंडल बनाए हुए थे और रासलीला कर रहे थे। तो प्रकाश विग्रह का उदाहरण दे रहे हैं कविराज गोस्वामी। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्व निकटम श्रियः यम मन्येरन्न भस्तावत् विमान शत संकुलम दिगौकाशम सदारो दाराणाम अत्यौ सुख्य बृहातमान ततो दुंदु भयो नेदुर निपेतु पुष्प वृष्टयः। हरेक गोपी ने सोचा कि कृष्ण केवल मेरे साथ ही रासलीला कर रहे हैं, किसी ने ये नहीं देखा कि कृष्ण अन्य गोपियों के साथ भी रासलीला कर रही हैं। और इस अद्भुत और सुंदर दृश्य को देखने के लिए जो दिव्य औकुशाम मतलब दिव्य लोक में स्वर्गलोक में रहने वाले जो निवासी हैं वो भी अपने पत्नियों को साथ में लेकर सदाराणा अति उत्सुक थे, बहुत उत्सुक थे देखने के लिए भगवान के सुंदर लीला को। वो भी सब आए और अपने विमानों में स्थित होकर आश्चर्यचकित होकर इस लीला को देख रहे थे। निपेतु पुष्प वृष्टयः, पुष्पों की वृष्टि वर्षा उन्होंने की। और फिर लघु भागवतामृत का एक श्लोक कहते हैं कविराज गोस्वामी। अनेकतर प्रकटता रूपस्यैकस्य कदा सर्वथा तत्स्वरूपैव सप्रकाश इति यते। यदि भगवान के भिन्न रूप हैं अनेक तरह प्रकटता रूपस्यैकस्य कदा, यदि अनेक रूप भगवान के हैं परंतु बिल्कुल एक हैं सर्वथा तत्स्वरूपैव, स्वरूप में एक है, रूप में आकार में बिल्कुल एक है, सप्रकाश इति यते, उनको प्रकाश विग्रह कहते हैं। और फिर विलास क्या है, विलास विग्रह क्या है? एक ही विग्रह किंतु आकार हो आन अनेक प्रकाश हो विलास तार नाम। यदि जो भिन्न भिन्न रूप हैं विस्तार हैं भगवान के, उनके रूप यदि अलग अलग हो जाएं तो फिर वो विलास विग्रह कहलाते हैं। और विलास विग्रह के उदाहरण देव हैं, जैसे बलदेव हैं, नारायण हैं वैकुंठ में, या चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो ये सब चीजें चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने बड़े कृपा करके समझाई हैं। काफी सूक्ष्म विषय है, समझने के लिए थोड़ा कष्ट होता है, फिर भी प्रयास करना चाहिए इन चीजों को समझने के लिए। और ऐसे समझ के बाद जब हम कृष्ण लीला सुनेंगे तो कृष्ण लीला और भी ज्यादा मधुर लगने लगती है। तो कृष्ण तत्व और कृष्ण लीला दोनों साथ साथ चलने चाहिए, जिससे कि अच्छी तरह से हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकें। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में ब्रह्म संहिता का एक श्लोक कहा है, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान श्री कृष्ण पुराण पुरुषम है, सबसे पुराने हैं व्यक्ति, परंतु नव यौवनम च, परंतु दिखने में एक नव युवक के समान दिखते हैं। यह है भगवान की विशेषता, यह है आध्यात्मिक जगत की विशेषता कि वहां पे कोई बुढ़ापन नहीं होता, और सबसे पुराने व्यक्ति होने के बाद भी वो बिल्कुल एक नवयुवक लगते हैं। यहाँ इस भौतिक जगत के भीतर भी हम देखते हैं, चार कुमार जो हैं ब्रह्मा जी के सबसे वरिष्ठ पुत्र, परंतु दिखने में हमेशा 5 साल के बालक के समान दिखते हैं। तो यदि ये भौतिक जगत में संभव है तो फिर आध्यात्मिक जगत में क्यों नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण पुराण पुरुषम नव यौवनम च हैं, इसलिए उनके संबंध में भी जो भी कुछ है वो भी नव यौवनम च है, अर्थात बहुत ताजा। इसमें कोई ऐसे भगवान कृष्ण की कथाएं, उनका रूप, उनका दर्शन, कभी ऐसे नहीं लगता कि हम ये बहुत घिसा पिटा विषय हो गया है, अभी बार बार सुन लिया है, नहीं। तो उपाय जी कहा करते थे कि भागवत की बात तो दूर है, भगवत गीता यदि हम बार बार पढ़ें तो हर बार कोई नया अर्थ निकल आता है, हम समझ सकते हैं कि कोई नया साक्षात्कार हमें हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है ही वैसे। हर चीज जो भगवान से संबंधित है वो भी नव नवायमान है। और आज से नया वर्ष शुरू हो रहा है, वैसे पाश्चात्य देशों के गणना से कल रात को पता नहीं लोगों ने क्या क्या किया होगा सारा दुनिया भर में, वो उनको नव नवायमान लगता है और एक दूसरे से हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। लेकिन हैप्पी क्या, अपने दुख को मिटाने के लिए ये सब करते हैं, अपने दुख को थोड़े समय के लिए भूल जाने के लिए कोई शराब पियेंगे, पार्टी में जाएंगे, न्यू ईयर पार्टी मनाएंगे और सोचेंगे कि चलो न्यू ईयर हमारे हैप्पी हो गया। संभव नहीं है। यदि हमारे नवीन वर्ष को हमें वास्तव में सुखी बनाना है तो कृष्ण से संबंधित उसे करना है। जो लोग इस प्रकार से नहीं करते उनके लिए ये हैप्पी न्यू ईयर नहीं होगा, ये मृत्यु के करीब एक और साल हो जाएगा। जैसे भागवत में कहा गया है, आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असो तस्यत यत क्षणों नीत उत्तम श्लोक वार्तया, कि हर दिन जब सूर्योदय होता है और एक दिन की शुरुआत होती है, नए दिन की शुरुआत हो जाती है और फिर सूर्यास्त हो जाता है, एक दिन समाप्त हो जाता है, तो जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण नहीं किया है, भगवान कृष्ण की कथाओं को सुना नहीं है, उनकी सेवा नहीं की है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये सूर्योदय और सूर्यास्त होना ये उसके लिए मृत्यु के एक दिन करीब जाने की बात ही है, बस इसका और कोई तात्पर्य नहीं है, उसने और कुछ हासिल नहीं किया इस एक दिन में, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उसने कुछ हासिल नहीं किया, हासिल इतना ही किया कि मृत्यु के एक दिन और करीबों पहुंच गया। मृत्यु की ओर जो उसकी यात्रा है उसमें एक दिन और करीब आ गया मृत्यु के, बस इतना ही उसने प्राप्त किया है। अन्य जितने भी भौतिक चीजें उसने प्राप्त कर ली है वो तो खोने ही वाला है, परंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने में अपना समय बिताता है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कोई फर्क नहीं है, उसके लिए चाहे वो मृत अवस्था में मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, वो जीवित रहे, स्वर्गलोक में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नारायण परः सर्वे न कुतश्चन विद्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। भागवत में यह भी कहा गया है कि भगवान के भक्तों के लिए भौगोलिक स्थान का कोई महत्व नहीं है, यहां तक कि यदि कोई शुद्ध भक्त वृंदावन के बाहर भी अपने प्राण को त्यागे तो क्या वो गोलोक वृंदावन नहीं जाएंगे, अवश्य जाएंगे। तो भगवान के धाम में लौटने के लिए यदि कोई शुद्ध भक्त है तो उसे वृंदावन में रहने की आवश्यकता नहीं है, भगवान की कृपा ऐसी है कि जब वो शुद्ध भक्ति देखेंगे उस व्यक्ति की तो तुरंत ले ही जाएंगे। इसलिए भगवान के भक्तों के लिए कोई निराशा की बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, बल्कि कृष्ण भावनामृत हमेशा ताजा रहता है। इस आने वाले नवीन वर्ष में शायद भक्त होने के नाते हमें विचार करना चाहिए कि पिछले साल में हमने कौन सी गलतियां की थीं। अपने आप ही बताने की भी आवश्यकता नहीं है किसी को, अपने आप ही हम सोचें कौन सी गलतियां हमने की थीं पिछले साल में, और इस साल में आने वाले वर्ष में हम इन गलतियों को दोहराएं नहीं, हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। बाहर की दुनिया में लोग इस नव वर्ष के दिन पर संकल्प करते हैं, ये एक प्रथा है सब जगह, और लोग एक दूसरे को पूछते हैं कि आपने संकल्प क्या किया। व्रत तो नहीं है लेकिन एक तरह का संकल्प समझिए। तो उसी प्रकार से हालांकि हमारे लिए हर दिन हैप्पी न्यू ईयर है, भक्तों के लिए हर दिन नवीन वर्ष की शुरुआत है, फिर भी एक औपचारिकता के तौर से देखा जाए, ठीक है अगर संकल्प करना ही है तो क्यों ना ऐसे कोई संकल्प करें जिससे कि हमारे भक्ति मार्ग में हम अच्छी तरह से प्रगति करें, कि हमारे 16 माला हम और भी ध्यान से जप करेंगे, रोज हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे, ऐसे कोई संकल्प यदि हम करें ताकि हमारी भक्ति में दृढ़ता और भी बढ़े, तो हमारा नवीन वर्ष मंगलमय होगा। जितना हम भगवान कृष्ण को केंद्र में रखेंगे, जितना हमारा जीवन कृष्णमय हो जाएगा इस नवीन वर्ष में, उतना ही ये मंगलमय और सुखी भी हो जाएगा। हरे कृष्णा। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न?
जब प्रकाश विग्रह को समझाया जा रहा था तब उसमें उदाहरण के तौर पे द्वारका की रानियों से कृष्ण जी का विवाह इसका वर्णन किया था, पर जब भगवान के विस्तार के बारे में बताया था तब उसमें कहा था कि उसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता थी, जो कि विलास विग्रह का डेफिनेशन था, तो कैसे हुआ?
हाँ, यही बात हम कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि जब भगवान ने विवाह के समय थोड़ा सा अपने रूप को बदल दिया तो फिर वो वैभव विलास कहलाने लगे। जब कविराज गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं, वो सामान्य रूप से कह रहे हैं कि जब भगवान ने अपने आप को विस्तार किया प्राय एक समान ही थे, इसलिए प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। विलास में क्या है कि काफी अंतर होता है, जैसे बलराम जी गोरे हैं, कृष्ण सांवले हैं, काफी अंतर है केवल बाहरी रूप में, वैसे तो कोई अंतर नहीं है कृष्ण बलराम। उसी प्रकार से चतुर्भुज नारायण में और कृष्ण में अंतर है, काफी अंतर है, इसलिए विलास। यहाँ अंतर ज्यादा नहीं है, इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं प्रकाश विग्रह भी है, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो उपक्ष कहते हैं वैभव विलास भी है, तो वो भी ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है, रूप गोस्वामी लघु भागवत अमृत में समझाते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप भी धारण किया हुआ हो, यदि वो यशोदा नंदन कृष्ण के भाव में है तो वो भी प्रकाश विग्रह कहलाता है, विलास विग्रह नहीं, हालांकि उनके चार भुजाएं हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे जब रुक्मिणी देवी घबरा गए कि शायद श्री कृष्ण हमको छोड़ते चले जाने वाले हैं, तो बेहोश होकर गिर पड़ी, तो उनको सांत्वना देने के लिए फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप मजाक में धारण कर लिया। तो भाव तो उनका था वही, परंतु केवल चतुर्भुज यूं ही धारण कर लिया, तो प्रकाश विग्रह ही कहलाता है, हालांकि रूप में थोड़ा अंतर भी है लेकिन भाव वही है, मूल है, ऐसा रूप गोस्वामी समझाते हैं लघु भागवतामृत में। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण। भक्तों का प्रसाद का व्यवस्था पीछे पंडल में किया गया है, तो आप कृपा करके पीछे पंडल की ओर से भी